ओम शांति। तो आज का जो टॉपिक मिला है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। तो बहुत सारी इसकी जो देखा, इसका यथार्थ अर्थ मुहावरों में तो नहीं मिला कहीं, लेकिन इसका अर्थ यही है कि चोर चोरी से चला जाता लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। अर्थात कि हमारी आदतें जो है, आदत से मजबूर, या जिसको कहते हैं आदत से बाज ना आना, या मोटी मोटी आदतें हमने छोड़ दी लेकिन जो सूक्ष्म है उनको नहीं छोड़ा। तो तीन दिन पहले भी जो चर्चा हुई कि वास्तव में चोरी शुरू कहां से होती है, तो जो संस्कारों की बात हुई थी कि पांच प्रकार के संस्कार, एक दो संस्कार जो माँ बाप से मिलते हैं, दूसरे वो संस्कार जो पूर्व जन्म के होते हैं, तीसरे संस्कार हमारे जो सर्कल में होते हैं, जहां हम संबंध संपर्क में आते हैं, दोस्तों के संबंध संपर्क में या फील्ड में आते हैं, चौथे हैं जो हम खुद क्रिएटिव करते हैं, क्रिएट करते हैं, जो हम कर्म क्षेत्र जाते हैं, कोई नया काम सीखते हैं, नए संस्कार पड़ जाते हैं, और पांचवें प्रकार के संस्कार जो हमारे अनादि संस्कार हैं। तो बाबा ने हम सबको जो है अनादि संस्कारों से अवगत कराया कि हमारी जो मूल नेचर है, मूल हमारी संस्कार हैं, आदत है, ये संस्कार हमारे जो है पिछले सभी संस्कारों को ध्वस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। संसारिक रूप से जो विषय है उनको तो इन संस्कारों का पता नहीं है, इसलिए उनके लिए कहावत लागू किया जाना ठीक है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जब हम आते हैं तो ये कहावत बहुत दूर तक रह जाती है, क्योंकि यहाँ आने पर हमारा जो काम होता है वो संस्कारों के ऊपर होता है, संस्कारों को परिवर्तन करना, क्योंकि ब्राह्मण हमारा मरजीवा जन्म है। बाबा ने जन्म से जो तिलक देते हैं पुरानी दुनिया से विस्मृति, तो वो ही हमारा प्रयास होता है, क्योंकि जो संस्कार हैं वो हैं तो आत्मा में है, लेकिन ये जो चोरी के संस्कार हैं ये सब देह के संस्कार हैं, वो आत्मा के संस्कार नहीं है। जब हम देह अभिमान में आते हैं, देह की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर या कहीं अभावों भरा जीवन बीतता है, कहीं कोई ऐसी समस्या आती है जहां आमने सामने कुछ नहीं दिखता है, तो फिर चोरी के संस्कार जागृत होते हैं। तो बाबा ने हम सबको ज्ञान जो है तो इससे परे का दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया है, आत्मा के जो ओरिजिनल अनादि संस्कार हैं, आदि संस्कार हैं, या पूज्य के संस्कार हैं, पूजनीय संस्कार, मध्य के संस्कार, या ब्राह्मण संस्कार हैं जिसको ईश्वरीय संस्कार कहेंगे। तो जो यहाँ हमें पुरुषार्थ करने के लिए बाबा प्रेरित करते हैं वो संस्कारों के तल पर है, और मूल संस्कार हमें अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं। तो मरजीवा जीवन के बाद ये जो संस्कार आते हैं, इन संस्कारों से बहुत सारी आदतें मिट जाती हैं। फिर भी मोटे तौर पर शूद्र जन्म से हम ब्राह्मण जन्म जब प्रवेश करते हैं, जब बाबा हमें परिचय देते हैं, अपना इस ज्ञान से अवगत कराते हैं, हमारा नया जन्म होता है, कुछ उसमें पुरुषार्थ करने के बाद हमारे पुराने जो मोटे मोटे संस्कार हैं, काम क्रोध मोह अहंकार के, उनसे हम दूर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर जो सूक्ष्म रूप से जो संस्कार रचे बसे हुए हैं, लंबे समय से जो आदतें पड़ी हुई हैं, वो वास्तव में अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में मन के अंदर वो बैठे रहते हैं, और जैसे ही वो संस्कारों को माहौल मिलता है, उन आत्माओं के, ऐसी वैसी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो वो संस्कार भले प्रैक्टिकल क्रम में नहीं आते हैं, लेकिन मन में एक बार हलचल वो जरूर कर देते हैं। तो उन संस्कारों को मुक्ति पाने का जो पुरुषार्थ है, बाबा हमें वो सिखाते हैं कि देह को ही भूल जाओ, आप वो ही विदेही, विदेही पन के जो संस्कार वो ऑटोमेटिकली परम धाम में स्थित होने के संस्कार हैं, परम धाम के जो संस्कार हैं, या आदि संस्कार हैं, देवता संस्कार हैं, या ब्राह्मण जीवन के ईश्वरीय संस्कार हैं, जो ईश्वरीय कुल मर्यादाएं हैं, वो संस्कार स्मृति में आने से फिर देह के संस्कार स्वतः विलीन होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया को, कैसे परिवर्तन हो उसकी विधि हमें हमेशा सामने हमारे रहनी चाहिए। कि कैसे हम उन संस्कारों से मुक्त हों। जैसे बताया ना, पांच विकारों को तो मोटे रूप से हमने छोड़ दिया, लेकिन उनके जो बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, घृणा, तो ये सब बातें जो है सूक्ष्म रूप से उनको खत्म करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और वो उन संस्कारों से मुक्ति पाने का जो सबसे अच्छा उपाय है, अशरीरी अवस्था की अनुभूति, अशरीरी अवस्था में लंबे समय तक स्थित हो जाना, कि उसी अवस्था में जो है बाबा से हम टच कर सकते हैं, बाबा से हम करंट ले सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं, बाबा से गुणों का अनुभव कर सकते हैं, प्यार का अनुभव कर सकते हैं, और जो बाबा के संस्कार हैं वो ही फिर हमारे में आते रहेंगे। अदरवाइज वो पुराने संस्कारों में आत्मा उसी में लिप्त होती रहेगी, और फिर वही अगर हमने उन संस्कारों से मुक्ति नहीं पाई जो शूद्र काल के हैं, तो जैसे कोई मौका मिलता है, ट्रिगर मिलता है, तो जो अंदर में छोटी मोटी चिंगारी रही है वो फिर चिंगारी बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। वैसे मन में आता है कि हमने बहुत सारे संस्कारों पर जीत प्राप्त कर ली है, लेकिन बाबा कहते हैं अंत तक कोई ना कोई संस्कार ये तो अंत तक आते रहेंगे, जीत तो अंत में मिलेगी। तो उस जीत को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ हमारा निरंतर चलता रहे, ताकि हम उन पुराने संस्कारों से मुक्ति पाकर इस ब्राह्मण जीवन के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सके। ब्राह्मण बनकर अगर हमने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, या जो हमारा कार्य है उसके प्रति हम सजग नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, तो फिर इस ब्राह्मण बनकर बाबा कहते क्या किया गया। तो हमें अपने संस्कारों से, वो हम स्वयं ही जांच सकते हैं, जो हमें अपने संस्कारों का खुद को पता है वो दूसरों को नहीं पता है। बाबा कहते मैं जाने जानन हार हूं, लेकिन एक एक के संस्कारों को थोड़ा बैठ के बताऊंगा, एक एक की बात को थोड़ा बैठ के बताऊंगा कि मन में क्या क्या चल रहा है, वो तो हम खुद ही जान सकते हैं। इसलिए अपने संस्कारों पर ही हमें काम करना है। दूसरा, संस्कार कैसे काम करते हैं, हमें याद है जब हम सर्विस करते थे तो एक भिखारी भीख मांगता था, रोज हम देखते थे लंबे समय तक भीख मांगता था। फिर एक दिन वो शॉप जहां सर्विस करते थे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप की, वहां वो एक ट्रांजिस्टर खरीदने आया, रेडियो। तो उसने बहुत अच्छा रेडियो खरीदा, 1200, ये 88-89 की बात है, फिलिप्स का रेडियो उसने खरीदा 1200 रुपए का, बहुत बड़ी बात थी उसमें, लेकिन शौक होता अपना सबका। तो उसने रेडियो खरीदा और खरीदने के बाद वो फिर जमीन पर बैठ गया और फिर ऐसे हाथ कर दिया उसने। तो मैं सोचा ये हाथ क्यों कर रहा है ऐसे, तो बोला भीख दे दो। तो उसके संस्कार जो है भीख वाले संस्कार गए नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर भी कई ऐसे संस्कार हो सकते हैं जो हमारे पिछले जन्म के अभी भी हैं, जैसे राय रूप से बाबा से मांगना है, या कोई भक्ति के संस्कार हो सकते हैं, कई प्रकार से छोटी मोटी इच्छाएं हो सकती हैं, जो जिन इच्छाओं से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात हमें इस ब्राह्मण जीवन की स्मृति नहीं है, विस्मृत हुए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं सारा खेल जो है स्मृति और विस्मृति का है। जैसे हम स्मृति रहती है, अपने कर्तव्यों के प्रति हम जागृत रहते हैं, अपने जो पुरुषार्थ है उसके प्रति सचेत रहते हैं, तो वो पुराने संस्कार स्वतः ही मर्ज होते जाते हैं, नहीं तो वही मर्ज ही मर्ज का खेल चलता रहता है। तो इसी तरह से एक दूसरी घटना याद है, ये 6-7 साल पहले की बात है। एक बीके भाई था, पुराना था, लेकिन थोड़ा हो सकता है मन से डिस्टर्ब हो। तो 7-8 साल पहले वो आया था, तो यहाँ बाबा की चारों धाम यात्रा की लास्ट में वो झोपड़ी में गया। झोपड़ी से जब बाहर आया तो गेट पर खड़ा था और मैं ट्रांसपोर्ट के बाहर खड़ा था। तो मैंने देखा इसने बगल में तकिए दबाए हुए दो, और वो बहुत साफ सुथरे तकिए थे। तो मैं बोला तकिए कहाँ से रहे, तो तुरंत संकल्प है कि बाबा की झोपड़ी के तकिए हैं ये दोनों। तो फिर मैंने शैलेंद्र भाई को फोन किया कि ये दो तकिए देखो कहाँ के आई। तो बोला हाँ ये तो बाबा की झोपड़ी के हैं। तो उसको पूछा फिर भाई ये तकिए क्यों लाया तुम। बोला ये तो बाबा की झोपड़ी से लाया, तो तू चोरी करके क्यों लाया। बोला चोरी करके नहीं लाया, ये तो बाबा ने मुझे बरसे में दिए हैं। कई बार हम भी ऐसे नहीं सोच ले यज्ञ की जो भी चीजें हैं ये बाबा ने हमको बरसे में दी हुई है, अगर बिना पूछे हम उनका इस्तेमाल करते हैं। डिपार्टमेंट जो है तो उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, चले भाई एक भले एक तोसा खा लिया या कुछ खा लिया, सोचते हैं हम अधिकारी है, इधर कुछ नहीं है, कोई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चोरी तो चोरी है। फिर वो आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे वो पक्की हो जाती है। तो बरसे वाली चोरी नहीं हमको करनी है, इसलिए हमको ये भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो जो भी हमारे समय है, संकल्प है, श्वास है, बोल है, इनको हमको सफल करना है। हम समय की भी चोरी करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन जितना भी है ये हमारा भगवान के प्रति समर्पित है। भगवान के कर्तव्य में हम तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, बाबा को हम सब समर्पित कर चुके हैं, चाहे हम प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे यहाँ समर्पित है, कहीं भी है, क्योंकि सारा समर्पण तो मन के स्तर पर है। तो अगर समर्पण होने के बाद या बाबा का बनने के बाद भी हम उस समय को विश्व कल्याण का के कार्य में ना लगाकर अन्य किन्हीं कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं, तो भी एक चोरी कही जाएगी, समय की चोरी। समय कौन सा चल रहा है और इस समय में हमें क्या क्या करना चाहिए दूसरों के प्रति। जैसे संडे वाली मुरली में बाबा ने कहा कि विश्व की तड़फती हुई आत्माएं आपको क्या नजर आती है। तो अगर हमें वो कर्तव्य विस्मृत हुआ पड़ा है और हम अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए छोटे मोटे कार्य में लगे हुए हैं, छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, तो ये भी समय की चोरी कही जाएगी। कि उस विश्व कल्याण के प्रति समय न लगाकर हम अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। फिर संकल्पों की भी चोरी हो सकती है। जो संकल्प बाबा ने हमको दिए हैं, जो हमारे विचार होने चाहिए, जो हमारी सोच होनी चाहिए, उसके विपरीत अगर हम कुछ सोच रहे हैं, उनके विपरीत हम कुछ कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारा कर्मों का आधार भी हमारे संकल्प रूपी बीज पर है। जैसा बीज हम बोते हैं, कर्म भी उसी अनुसार होते हैं, हमारी एक्टिविटी चलन चाल चलन भी उसी अनुसार होती है। तो कोई संकल्प भी हमने पुराने तो नहीं पकड़ के रखे हुए हैं। जो संकल्प हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन रहे हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से संकल्पों पर भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बोल हम कौन से बोल रहे हैं, बाबा ने हमें बोलने के लिए क्या क्या कहा हुआ है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, किसी को सुख दान देने वाले बोल बोलो, कल्याणकारी बोल बोलो, या उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलो, या हमारे बोल से किसी के दुख दूर हो जाए, हमारे बोल से किसी में उत्साह जाए, उमंग सा जाए। उनको छोड़कर हम कहीं दूसरे की निंदा पर निंदा चिंतन करने में तो नहीं लगे हुए, जिनके कारण यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, जिस माहौल को बाबा ने अपने तपस्या के बल से इतना श्रेष्ठ बनाया है, और उस माहौल अगर हमारे बोल से, हमारे कर्मों से अगर खराब हो रहा है, तो ये भी एक जैसे ख्यानत है, अमानत में ख्यानत है। जैसे हम उस वातावरण की भी चोरी कर रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से उसको भी हमें जांचना अपने आप को कि कहाँ कहाँ हमारे संकल्प जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे बोल ऐसे व्यतीत हो रहे हैं, कौन सी हम भाषा प्रतीत करते हैं, भाषा उपयोग करते हैं। क्योंकि भाषा जैसे बताया ना कि वहां का हम छोड़ के तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आदत सी पड़ी रहती है। क्या कहते हैं, हमारे घर में ऐसे होता है, हमारे उधर ऐसे होता है, अब हमारा उधर कहाँ से आया, वो तो खत्म हो गया ना सारा। फिर भी कहने में आता है, काली बाबा ने कहा, बहन जी बता रहे थे ना, लौकिक शब्द यूज करूं। अगर लौकिक शब्द हम यूज करते हैं तो उसमें फिर अपनी जो अपने संबंधों की जो नजदीकी या संबंध समीपता है वो कम हो जाती है बिल्कुल। तो लौकिक शब्द यूज करने से हम बेहद में आ गए हैं, अभी हद हमारे छूट गए हैं। तो भाषा का भी क्या प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिर अंदर में वो कोई ना कोई एक स्मृति बनी रहती है एक क्षेत्रीय बात की, कि हम तो फलाने स्टेट के हैं, हम तो फलानी स्टेट के हैं। फिर यहाँ आकर भी या कहीं भी जाते तो उसी भाषा में आपस में बात करेंगे। अगर मान लो हमको दोनों को हिंदी आती है और हम दोनों पंजाबी बोलते हैं, तो फिर ये भी रॉन्ग है, जबकि बाबा ने हम सबको बता दिया है कि एक ही भाषा सबकी, हिंदी सीखो, इस हिंदी सीखना माना तवा टू मौत, और बाकी सब भाषाएं तो ताकत में फिर वैसी मिलती। इसलिए विदेशियों की कितनी विशेषता होती है, आकर वो हिंदी सीखते हैं, हम देखते हैं इतने सालों से हम इधर इंग्लिश नहीं सीख पाए, लेकिन वो हिंदी जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। कोई बात नहीं, हिंदी तो फिर भी टॉप में ही है। तो भाषा से हमें, भाषा का भी ज्ञान, जो बाबा ने हमको भाषा सिखाई है, अगर हमको वो आती है तो उसी में हमको ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। नहीं तो कई बार वो दो दूसरी स्टेट के बात करते लगता है पता नहीं हमारे लिए गाली ना निकाल रहे हूँ, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए अगर वो आती है भाषा अगर नहीं आती है यहाँ बोली वाली बेचारी माताएं आती है देखते हैं महाराष्ट्र से, तो उनको हिंदी नहीं आती, या गुजराती माताएं होती हैं या तमिल वाली होती हैं, तो वो सोचते हैं तमिल समझते होंगे तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हमें आती है और उसके बावजूद भी हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भाषा का उपयुक्त स्थान पर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, ये भी हमको थोड़ा अपने ऊपर नजर रखने की जरूरत है। नहीं तो वो फिर संस्कार बनते जाते हैं लंबे समय तक, वही संस्कार और वही फिर अपना लौकिकपन पूरा याद रहेगा। तो भाषा की बात। फिर भोजन भी हम जो करते हैं, भोजन में भी ऐसे होता है कि हम तो पहले ऐसे खाते थे, अभी ऐसे है, तो माना पुरानी आदतों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, अभी तक नए संस्कारों का निर्माण हमने नहीं किया है। जितना जितना ब्राह्मण जीवन के संस्कारों का निर्माण करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति भी वो वैसी बनती जाएगी निर्माण चित, नहीं तो फिर वही पुराने स्वाद, वही जीवा रस, वही कर्मेंद्रिय के आकर्षण खींचते रहेंगे। तो लौकिक संबंधों से और अलौकिक संबंधों, क्योंकि यहाँ तो पुरुषार्थ है, अलौकिक संबंधों से भी ऊपर जाने का है। बाबा ने कहा सब पारलौकिक, सब परम धाम से आए हैं, उसी स्मृति में रहना है, क्योंकि हम सबका अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में पुरुषार्थ भी हमारा अंतिम ही है, सारे कल्प का ये अंतिम पुरुषार्थ है। जो हम बीज अभी बो रहे हैं, यही बीज सारे कल्प का आधार है, जिसके आधार पर हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है या पूरे कल्प की प्रारब्ध जमा हो रही है। इसी तरह से एक और कहानी है कि चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। एक होता है डकैत होता है बहुत बड़ा, तो उसको संस्कार होते हैं चोरी करने के, लंबे समय तक चोरी करता रहता है, नहीं छूट पाता बेचारा, आदत से पक्की हो जाती आदत, जैसे कहते हैं ना एक एक धागा करके मोटी रस्सी हो जाती है, इसी तरह छोटी छोटी चोरी करते 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 एक पक्की आदत हो जाती है। और फिर वो कर्म करते हुए भी हमें मन में उसका भान नहीं रहता कि हम गलत काम कर रहे हैं, नेचुरल सा हो जाता है वो। तो इसी तरह एक डकैत था, लंबे समय तक वो चोरी करता रहता था, उसके बहुत सारे साथी थे, पकड़ा भी जाता था, जेल में डाला जाता था, बहुत यातनाएं भी मिलती थी, जेल वर्ल्डी हो गया था समझ लीजिए। जैसे वापस आता था फिर चोरी की, फिर पकड़ में आता था फिर चला जाता था। वास्तव में वो अपनी चोरी से भी, इस चोरी की आदत से भी बहुत तंग हो गया था, तो एक बार क्या हुआ फिर उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो अब उसने निश्चय किया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत जीवन काल ऐसे बीत गया है, अगर सारा जीवन काल ऐसे बिताएंगे तो इस जीवन का फिर क्या औचित्य है। तो एक दिन वो प्रवचन में जाकर बैठता है, सत्संग कहीं चल रहा होता है, तो सत्संग सुनता थोड़ा, तो देखता है कि जो सामने इस प्रवचन करता है सन्यासी हैं, संत महात्माएं हैं, लोग उसकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं और उसके प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान है, एक ऊंची भावना है। तो प्रवचन पूरा होने के बाद देखते हैं कि वो संत को सभी कुछ न कुछ भेंट करते हैं, वो पैसा चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं। तो सोचे प्रवचन करने का काम ठीक है, पैसा तो अपने आप ही आता है, इधर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अब वो प्रवचन जहाँ भी सत्संग होता तो सत्संग में जाना शुरू कर देता था, तो फिर आगे जाके बैठेगा, हाँ हाँ करेगा, फिर संतों को भी नजरें पड़ती हैं ऊपर। तो धीरे धीरे एक बार उसने संतों से आग्रह किया कि मैं भी आपकी सेवा में समर्पित हो जाना चाहता हूँ। तो वो उनकी सेवा में लगा रहता है, बहुत सेवा करता है, खूब सेवा करता है, तो दिन रात उनके पीछे संतों की आवभगत करता है, तो फिर संतों के मन को वो जीत लेता है, तो फिर वो संतों के साथ रहने लगता है, सवेरे शाम उनकी सेवा करना, जो वो कहते हैं वो करना, सारा काम करना उनका, उनको खुश रखना। फिर भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े वो प्रवचन भी सीख लेता है, तो अब वो संतों के साथ ही आना जाना शुरू कर देता है, तो जहां भी जाता है संतों के साथ ही रहता है। तो प्रवचन करने एक बार संत जाते हैं बहुत दूर कहीं, तो जंगल में उनको कहीं रात हो जाती है, तो जंगल में रात को सोते हैं, तो वो कहता है जो डकैत था, जो भी की संत बन चुका हुआ नया नया संत, तो वो कहता है कि मैं अभी आपकी रक्षा करूंगा, आप भले निश्चिंत होकर रात को सो जाइए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो सो जाते हैं सभी, फिर रात को उसकी आंख खुलती है डकैत की, तो अब वो चोरी के संस्कार जागृत हो जाते हैं, क्या करे। तो क्या किया हुआ उसने जो कमंडल थे सभी के, कमंडल एक का कमंडल दूसरे के पास रख दिया, दूसरे का तीसरे के पास, चौथे के पास, ऐसे सबके कमंडल बदल दिए। अब चोरी नहीं करनी तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो करेगा ना, तो वहां सारे कमंडल बदल दिए उसने। तो सवेरे जब उठे तो सब एक दूसरे के मुख की तरफ देख रहे हैं, ये कमंडल किसने बदले होंगे इधर, तो वो तो चुप रहा। फिर दूसरी रात भी ऐसे हुआ, तो फिर सुरक्षा की उसने, फिर कमंडल बदल दिए। अब तीन चार रात ऐसे होता रहा, तो सन्यासी देखते रहे कमंडल कौन बदल रहा है। तो एक रात एक सन्यासी चुपके से उठ के देखता है, वो चीज इधर की चीज उधर रख रहा है, उधर की चीज उधर रख रहा है। तो उसको पूछा भी ऐसे क्यों है, तो बोला अब मेरी चोरी तो छूट गई है लेकिन हेरा फेरी नहीं छूटी, क्या करूं अभी, तो कमंडल ही सही। ऐसे हम इस ब्राह्मण जीवन में तांक जांक तो नहीं करते रहते हैं, पुरानी चीजें छोड़ दिया लेकिन फिर भी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये भी तांक जांक है। तो इन चीजों से भी हमको मुक्ति पानी है। तो इस तरीके से जो भी हमारे शूद्र काल के जो संस्कार थे, अभी भी थोड़े थोड़े हैं, उनको छोड़ना है, उनको छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। तो सबसे जो सूक्ष्म पुरुषार्थ है वास्तव में हमारे संकल्पों पर है। संकल्प रूपी बीज ठीक है तो बाकी बोल कर्म संबंध संपर्क ये सब स्वतः ठीक होते जाएंगे। जब तक हम अपने संकल्पों को ठीक नहीं करेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, जीवन में फिर निरस्ता बनी रहेगी। और संकल्पों को परिवर्तन करने का एक ही माध्यम है ज्ञान योग, उसके बिना कुछ नहीं है। जितना हम मर्जी वाले सेवाएं कर लें, सेवाओं से भी दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन जो ज्ञान योग से स्वयं को परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जितनी तेज है, बाकी दूसरी कोई ऐसी विधि नहीं है। तो संकल्पों को हमको शक्तिशाली संकल्प बना, और शक्तिशाली संकल्प जो संडे की मुरली में से कैसे बने, मुरली से ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उन अच्छे से अच्छे संकल्प जो हमें थोड़ा मन बुद्धि को धक्का लगाए, जिससे हमें थोड़ा पुरुषार्थ के प्रति गति मिले, जागृत हो। तो अव्यक्त मुरली जो होती है उसमें बहुत सारे अच्छे सम्मान होते हैं, अच्छी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को सहज परिवर्तन कर सकती है, हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर सकती हैं, ताकि हम पुरानी आदतों से छूट सकें, नए संस्कारों का निर्माण कर सकें। एक तो समय पर ध्यान देना है कि हमारा समय कहाँ कहाँ जा रहा है, दूसरा संकल्पों पर, संकल्प हमारे कितने श्रेष्ठ बने हैं, अगर नहीं बने तो फिर से उनके ऊपर कार्य करना है, ताकि हम अपने पुराने आदतों से छुटकारा पा सके, निजात पा सके। और कर्म, कर्म हमारे श्रेष्ठ फिर स्वतः हो जाएंगे, बोल भी हमारे श्रेष्ठ स्वतः हो जाएंगे। इसी तरह हमारे जो ये चोरी के संस्कार क्यों जागृत होते हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे लोभ वृत्ति है या संग्रह वृत्ति है अभी भी मन में बैठी हुई है, कि जिन चीजों से हमारा जीवन चल सकते हैं उसके अलावा हम अतिरिक्त कुछ संग्रह करने की वृत्ति है, चाहे वो छोटी मोटी वस्तुएं हैं जिनके प्रति हमारा बार बार मन बुद्धि जाता है। जैसे चार दिन पहले भी चर्चा ना, कोई भी किसी ने अगर चीज खरीदी होगी, अगर हमको लेनी नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कितने की थी, ये कहां से आई, ये तो ये छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं, पूछते रहते हैं हम। एक्स्ट्रा है क्या? हमारा पड़ोसी भी है एक, अगर हम एक चीज लाते, बोला दो लानी चाहिए थे ना आपको, एक हमारे लिए। तो इस तरह, खैर वो तो मजाक कर दिया हम आपस में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें लोभ वृत्ति, जैसे कोई नया मॉडल आएगा तो अपने वाला फीका लगना लग पड़ता है। तो इसी तरह से इन छोटी छोटी बातों में हमारी वो चोरी तो छूट गई, लेकिन ये हेरा फेरी सूक्ष्म रूप से संकल्पों की हेरा फेरी, तो इससे भी हमको छूटना है। वस्तुओं से हमारा कहाँ लगाव है, कहाँ अनासक्त वृत्ति से दूर तो नहीं हम जा रहे हैं, आसक्ति तो नहीं हमारे पैदा हो रही है, कोई भी वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर रही है, हमें उन सूक्ष्म रूप से जो जाल है वस्तु व्यक्ति वैभव इनमें फंस तो नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम फंसे हुए थे और उनसे भी छूटना है। तो उन सबसे मुक्ति पाने के लिए खुद कोई प्रयास करना होगा, खुद कोई मंजिल पर चढ़ना होगा, अकेले चलने का मंजिल है ये। क्योंकि पुरुषार्थ हम भले एक संगठन में करते हैं, लेकिन ये संगठन भी वास्तव में आधार नहीं है, अकेले का पुरुषार्थ है। तो संगठन में हमारे पुरुषार्थ को गति मिल सकती है, लेकिन करना तो अपने का मंजिल तो हमें तय खुद ही करनी है, चलना तो खुद को पड़ेगा। भले हम संगठित रूप से यहाँ से आप बुरुड़ कहीं भी जाए, चलना तो वहाँ खुद को ही पड़ता है, वहाँ संगठन नहीं चलता है, लेकिन संगठन की जो शक्ति होती है वो हमें प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए, हमें पुरानी आदतों से छूटने के लिए। क्योंकि संगठन में हम बहुत सारी बातें सीखते हैं, सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने होते हैं, कैसे दूसरों ने उन संस्कारों से मुक्ति पाई है वो हम सीख सकते हैं, कैसे उन्होंने छोटी छोटी आदतों से छुटकारा प्राप्त किया वो सीख सकते हैं। तो संगठन में बल है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो हमें खुद के स्तर पर ही खुद के मनोबल को ज्यादा ऊंचा बनाने के लिए, खुद ही हमें ज्ञान योग में ज्यादा लिप्त होना पड़ेगा। तो जितना हम इसमें बिजी रहेंगे, स्वयं को बिजी रखेंगे, उतना हमारा कल्याण है, हमारी प्रगति होगी, हम ही मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी हमारी आदतें जो है उनसे छूटने के लिए इस तरह से ज्ञान योग में हमको बिजी रहना बहुत जरूरी है। अभी साहू भाई बताएंगे मनसा सेवा के ऊपर, जो चार दिन की मनसा सेवा हमने पढ़ी है उसको बताएंगे उसके ऊपर।